किसी का पेट का दर्द हुआ तो वह योग से ऐसे हाथ फेर देते ठीक हो जाता है, और किसी पर बिगड़ जाते थे उनको कुछ दर्द आता या कुछ
लाइन लाइन लग रहा
है
किसी में कोई तो
इसमें वहाँ की बड़ी आकर्षित हुई और उनको भगवान मानने लगी। कुछ दिन के बाद में उनका ऐसा प्रभाव कि सारे उड़ीसा भर में लाखों लाखों लोग उनके पास में आने लगे। जंगल के बीच में उन्होंने ऐलान किया कि मैं भगवान हूँ, कृष्ण हूँ, और ये अगली पूर्णिमा को मैं राष्ट्र करूँगा। इसलिए जितने घर की स्त्रियाँ हैं सभी लोग आएंगी और रात में हम राष्ट्र करेंगे। सभी स्त्रियाँ एकदम तैयार हो गई और वैसे जाने के लिए सभी उनके पास में जाती थी। घर वाले बड़े उद्विग्न हुए, दुखी हुए कि ये महात्मा ऐसा है जो राज करेगा और हमारी घर की स्त्रियाँ चली जाएंगी रात में। इसलिए उन्होंने कोर्ट में नालिश की। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर नाम के एक थे महात्मा हमारे गौड़ीय वैष्णव के, तो उस समय में वो उप जिलाधिकारी थे, उनको यह भार सौंप दिया जैसे आप इसमें इंक्वायरी करके यथा योग्य अवलंबन करें व्यवस्था क्या करना चाहिए। अपने साथ में ये पुलिस सीलिस का दल लेकर के चार पांच पुलिस इंस्पेक्टर और 20-25 सिपाही इत्यादि लेकर के उस घना घोर जंगल में पहुंचे। वहां जाते ही पहले से वो सब व्यवस्था कर रखा था जो ये आ रहे हैं, और उनका खूब आवभगत किया, बड़ा आदर किया, खाने पीने की सारी व्यवस्था की। किंतु उन्होंने उसका एक बूंद भी पानी भी नहीं ग्रहण किया और किसी बात किया। उसे बातचीत होने लगी तो उसने कहा कि आपका नाम भक्ति विनोद ठाकुर है, आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आप हमारी इंक्वायरी करने आए हैं, ठीक है। देखो मैं भगवान हूँ, यदि कल्याण चाहते हो तो हमारे विरुद्ध में कुछ मत करना, हम पूर्णिमा को राष्ट्र करेंगे और मैं भगवान हूँ। कुछ दिनों के बाद में मैं भारत का तख्ता उलाट करके मैं वहाँ का राष्ट्रपति और प्रधान बन जाऊँगा और मेरा राज्य चलेगा और किसी का राज्य नहीं चलेगा, हमारी हुकूमत चलेगी। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा वेदों में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा गया, शास्त्रों में, वेदों में शास्त्रों में तो लिखा जो कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, गीता में, भागवत में, रामायण में, पुराण में ये सब लिखे हैं, भगवान के अवतारों का नाम होता है, तो आपके तो नाम का कहीं उल्लेख नहीं है जो आप भगवान है। आप अपनी विचारधारा को बदल दीजिए, नहीं तो मैं आपको पकड़ करके जेल में ठूस दूंगा और आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी, आप इसके लिए तैयार हो जाए। सिपाहियों का जिनको पकड़ लो, यदि मेरी बात नहीं मानते हैं, सिपाही पकड़ने के लिए गए तो उसने ऐसे सीज किया तो आग धड़क करके निकलने लगी, सब सिपाही भाग गए। उन्होंने कहा उसको, सिपाहियों को देखा जी ये भाग गए तो उसको पकड़ लिया और उनका जटा कैंची लेकर के सबको कटवा दिया और उनको पकड़ करके ले आए भुवनेश्वर, कटक उस समय राजधानी थी, कटक में ले आए और अपने कोर्ट में उनको उपस्थित करके और उनको कहा आप भगवान है तो आप ये व्यवस्था लोग इसका विरुद्ध में आप कुछ कर लीजिए। अच्छा ठीक है, तुम कल कोर्ट में आना पेश करना। रात में इनके पेट में बड़ा भारी दर्द उठा, इतना जो कराहने लगे उनके घर की स्त्री और बच्चे कहने लगे जैसे आप उसके विरुद्ध में बेकार का क्यों लड़ते हैं। मैंने कहा कि ये भगवान का प्रश्न है, ये भगवान हो जाएगा, मैं जानता हूं कि ये भगवान नहीं है, साधारण भोले भालो लोगों को ठगता है, इसको जरूर दंड होना चाहिए। दूसरी बात से ठगता तो कोई नहीं है, भगवान के नाम पर ठग रहा है, भगवान का नाम करते रहे, रात में तो कुछ हुआ, इसके बाद में ठीक हो गए, कोर्ट में चले गए। तो कोर्ट में दूसरे दिन उसको हाजिर किया गया, कहते तुमको रात में कुछ हुआ है, ये मेरे वजह से हुआ, अभी मैंने तुमको सूचना दी है, अभी तुमको मैं जान से खत्म कर दूंगा यदि तू नहीं मानता है। ये ठीक है, मैं तो जानता हूं कि भगवान के अतिरिक्त और कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो ठीक है आप यदि अपना ये विचार नहीं बदलते हैं कि मैं राष्ट्र नहीं करूंगा, राष्ट्र करूंगा तो आज ही आपको मैं जेल देता हूं, 6 महीने का परिश्रम कारागार, परिश्रम के साथ में हो। तो उसने खाना छोड़ दिया, पानी पीना भी छोड़ दिया और उसको जेल दे दिया, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, कुछ देर के बाद में मर गया। ऐसे ही आजकल कलयुग में बहुत से भगवान निकले हैं जिसमें साईं बाबा एक प्रधान है भगवान, एक ही भगवान नहीं, कितने आजकल भगवान निकले हैं। आपको सावधान करने के लिए कह रहा हूं, लोगों को ठगने का अतिरिक्त और कुछ नहीं। जिसको भागवत कहती है ये भगवान है, गीता कहती है ये भगवान है, वाल्मीकि रामायण इत्यादि कहते हैं ये भगवान है, श्रुतियों में पुराणों में उपपुराणों में कहते हैं। जिसको नारद जी, व्यास जी, सुखदेव गोस्वामी, वाल्मीकि जी, बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो दिव्य दृष्टा हैं और भूत भविष्य को जानते हैं, वो लोग यदि कहते हैं तब तो ठीक है, और नहीं तो उनके ऊपर में विश्वास मत करो, तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देंगे, अपने जीवन को भी बर्बाद करते हैं दूसरों को भी। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना है। उसे जादू सीख लेते हैं, बीसी राय कलकत्ते का नाम सुना होगा, एक बार पेपर में उसने लिखा कि मैं साईं बाबा का दर्शन करने गया, तो उन्होंने हमारे ऊपर में हिप्नोटिज्म या क्या कहते हैं जादू किया, अंधकार करके धुएं से घर भर रखा था और उसमें कुछ जादू किया, कोई चीज उनके पास में थे तो वो तो जादू में माहिर है, उसने जादू से वो चीज उनको फिर लौटा दिया। शायद इसी के बल पर लोगों को धोखा देते हैं, आपका कभी भी कल्याण नहीं होने, लोग को कहते हैं कि मैं भगवान हूं, पैसे के लिए बिलबिलाते हैं भगवान। कभी कृष्ण और राम का चरित्र देखिए, उनका नृसिंह जी का चरित्र देखिए, कल्कि जी का देखिए, ये लोग भगवान के अवतार हैं, कृष्ण स्वयं भगवान है। यदि जिसका नाम भगवान शास्त्रों में नहीं लिखा है वो भगवान नहीं हो। दूसरी बात, महात्मा भी उन्हीं को मानो जो कलि काल में भगवान का नाम जपते हैं, क्योंकि कलियुग का धर्म है कृष्ण नाम का संकीर्तन। तो जो भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, नाम में जिनकी बड़ी रुचि है वे महात्मा है। अभी सूरदास हुए, तुलसीदास जी हुई, मीरा हुई, अभी उसके पहले विष्णु स्वामी जी हुए हैं, मध्वाचार्य हुए हैं, रामानुजाचार्य हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु जगत में आए हैं, इन लोगों ने क्या किया? चारों जगत में, चारों ओर में भगवान नाम का कीर्तन किया। जिसको जो कहते हैं वही हो जाए, ये लोग महात्मा है। जो गीता को, वेद को, उपनिषद को, शास्त्र को, रामायण पुराण को नहीं मानता वो साधु नहीं। जो स्वयं कुछ साधन नहीं करता, रुपयों के लिए ललचता है, दूसरों के पास में भीख मांगता है, छल बल से उनका अपहरण करता है, वो सब साधु नहीं, उन पर विश्वास न करो। कलयुग का केवल नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम। जो लोग कहते हैं कि हम यज्ञ कराएंगे, जो कहते हैं हम तप करेंगे, तपस्या करते हैं, जो करते हैं, कलयुग के लिए ये सब धर्म नहीं, ये कुधर्म है, सक्षम धर्म है, इनसे सावधान रहो। एक भगवान का नाम भी यदि कोई करे, यदि दीक्षित भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, तो भी ये संसार से उतर जाएगा। और दीक्षित होकर के प्रेम से साधन करके भगवान का भजन करता है तो वो ब्रज में राधा कृष्ण की सेवा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। इसलिए आप लोग सच पथ पर चले, गीता भागवत रामायण पुराण शास्त्र मैंने नारद जी की बात, सुखदेव गोस्वामी की बात, व्यास जी की नाम की बात, ये सब वाल्मीकि जी के बात मान करके हम लोग, यही हमारी भारतीय संस्कृति, और नहीं तो कभी भी सुख और कल्याण नहीं हो सकता, ये गारंटी की बात है। इसलिए कह रहा हूँ कि आज तक ऐसे धोखाबाजी देकर के अपना उल्लू सीधा करते हैं, लोगों को मूर्ख बनते हैं बनाते हैं, तो मूर्ख क्या बनाते हैं, अपने मूर्ख बनते हैं। इसलिए कलयुग का सरल सीधा सहज राम रूप में भगवान कृष्ण का नाम, और जितने नाम है उनमें वेदों में ऐसा लिखा है, हरे कृष्ण वेदों में लिखा गया, पुराणों में लिखा गया, आगम में लिखा गया, निगम में लिखा गया। इसको, इस नाम को ग्रहण करके सभी लोग भव सागर को पार करके भगवान को पाए हैं, इसका उदाहरण है। कुछ लोग कहते हैं कि तुम ही ब्रह्म है, तुम ही ब्रह्म है, जो इच्छा तो करो, कोई बात नहीं, बस ये कह दो जो मैं ब्रह्म हूं और हमारा मंत्र ले, वो भी शास्त्र बहिर्गत। ऐसे लोगों का कल्याण, इन धोखेबाजियों से हम लोगों को, बल्कि विचार करके यदि पानी पिएंगे तो छान कर परीक्षा करके पूछ करें, एक हानि खरीदेंगे तो उसे बजा करके ठन ठन या खन खन बोलती है, तो गुरु करेंगे ऐसे ही। जो शास्त्रों को मानता है, साधन भजन करता है, संसार से अनाशक्त है, भगवान के प्रति भक्ति है, नाम संकीर्तन करता है, ऐसे लोगों को साधु संत मान करके उनके शरण ग्रहण करके पहले तब इसमें कल्याण, अन्यथा लौकिक दर्शन। बहुत देवता देवियों की पूजा कहीं भी नहीं दिखी है, गीता देखो, एक कृष्ण की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है, राम की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है, विशेष करके कृष्ण की, कृष्ण स्वयं भगवान है, देवता लोग उनके आधिकारिक विभूतियां हैं, वो लोग भगवान नहीं है। लाख जन्मों तक दुर्गा की, काली की उपासना करके संसार से कोई पार नहीं काट सकता, फिर उनका जन्म मरण होगा, और भगवान का भजन, एक कृष्ण का भजन भजन करें मुकुंदेगा, तो साथ साथ में सहजी रूप में मुक्ति हो पा करके संसार के दुखों से, और अंत में कृष्ण की सेवा को प्राप्त करके ब्रज में भी उसका जन्म हो सकता, ब्रज की सेवा को प्राप्त, एकदम निश्चित विश्वास, ऐसा तब तो कल्याण होगा, और नहीं तो लाखों जन्म देवता देवियों का भजन करके थी कुछ कल्याण नहीं। अधिक से अधिक वो देवता यदि प्रसन्न होंगे और उनसे हम मांगेंगे कि आप हमको कृष्ण भक्ति दें, तो ये दुर्गा जी कृष्ण की भक्ति दे दें, यहाँ तक तो हो जाए। बहुतों का ऐसा हुआ है किंतु बिना मांगे नहीं देंगी, उनसे संसार की लौकिक चीजों को मांगेंगी तो संसार में धन जन पुत्र परिवार दे देंगे। इसलिए ये सब चीजों को अच्छी तरह से ख्याल रखकर और भगवान का भजन करके इस मनुष्य जन्म को पाया है, बहुत दुर्लभ मनुष्य, लफा तो दुर्लभ हम जन्म, इस जन्म को खोना नहीं है, जल्दी से जल्दी भजन करके चलना है। यहाँ पर हमारी बाप की पॉलिसी ये जगह नहीं है, रिफ्यूजी है, छोड़ना पड़ेगा। अपने आप नहीं छोड़ेगा तो जबरदस्ती छोड़ा देंगे, एक फूटी हुई कौड़ी को लेकर के साथ में नहीं जाने देंगे। इसलिए सर्व सहज रूप में क्यों नहीं भगवान का नाम करते हुए अपने घर में भी चित्त करते, किंतु उसमें एक बात है, सदाचार बन करके करना। सदाचार क्या? मांस मछली प्याज लहसुन बीड़ी सिगरेट चुरूट अफीम गांजा भांग ड्रग धूम्रपान इत्यादि से दूर रहो, रह करके सदाचार अवलंबन करके सत्संग में इन तत्वों को जान करके भगवान का भजन करके तब पैसे, अन्यथा लाखों जन्म बीत जाएंगे आप फिर जहां के तहे। इसलिए हमारे महात्मा लोगों ने गीता में वेद में उपनिषद में एक ही बात कही, समस्त वेद कहते हैं ये कृष्ण ही सबके प्रतिपादक विषय है, इनकी सेवा हमको करें। हम स्वरूप से कृष्ण के दास दास हैं, भगवान को भूलने से है हमारी ये दशा, ये कृष्ण करो तो। संग के द्वारा ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। जिसको सत्संग पाप मिल गया वो समझो जो भगवान मिल गए और उसका जीवन सार्थक हो गया। जिनको सत्संग नहीं मिला उनका जीवन व्यर्थ जाएगा। यदि एक दिन भी सच्चे संतों का संग मिल गया, रसिकों का संग मिल गया, तत्वज्ञों का संग मिल गया तो एक जीवन में ही जीवन का काया पलट हो जाता है। सत्संग के द्वारा ये बंदर हनुमान सुग्रीव इत्यादि अंगद, सत्संग के द्वारा नारद ऋषि, सत्संग के द्वारा भालू जांबवंत, सत्संग के द्वारा राक्षस कुल में जन्म लेने वाले विभीषण, प्रहलाद महाराज जी भी असुर कुल में पैदा होने वाले, ये सब लोग जगत के आदर्श बन गए, इनका जीवन सफल हो गया। इसलिए लिखा गया शास्त्रों में, संसार में भ्रमण करते 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 किसी सौभाग्य से यदि सच्चे संतों का भगवत प्रेमी भक्तों का संग मिल गया तो समझ लो कि हमारे दुख के दिन चले गए और बहुत शीघ्र ही हम भगवान की सेवा को प्राप्त कर सकते, तब निश्चित समझो। क्योंकि संत किसको कहते हैं, संग किसको कहते हैं, जो कृष्ण की सेवा में जिनकी मति पगी हुई है। अभी हमारे श्रीमान शुभानंद जी ने बतलाया राय रामानंद संवाद में, राय रामानंद जी बतला रहे हैं कृष्ण की भक्ति में जिनकी मति शराब हो रहे इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं जानते, उनके संग को पाने के लिए यदि सिर भी देना हो तो मत हिचकिचाओ, इसका उचित मूल्य दे करके साथ ही साथ में उनका संग करो। संग करने से साथ ही साथ में जीवन की काया पलट होकर के उसमें भक्ति का अंकुर जन जाएगा। इसे आज तक जिन लोगों का कल्याण हुआ है ये सब सत्संग के प्रभाव से हुआ है। ये सुग्रीव जी भटक रहे थे, उनकी स्त्री को छीन लिया बाली ने और दुखी होकर के भटक रहा था, हनुमान जी की कृपा से उनको राम का संग मिला, नहीं तो नहीं मिलता। प्रहलाद जी अपनी मैया की मैया के पेट में थे, नारद जी का संग उसी समय मिला। अशुकुल में पैदा होने पर भी ऐसे उच्च कोटि के महात्मा प्रहलाद महाराज जी 5 वर्ष की उम्र से ही हो गए, जन्म से ही हो गए। नारद जी निज कुल में जन्मे थे, किंतु सनक सनंदन सनातन आदि ऋषियों का उनको संग मिल गया, उनके प्रभाव से देखो जो कैसे जगत में पवित्र हो गए। ध्रुव राज्य के लिए ललक रहा था, उसके मैया भक्त की मैया ने थोड़ा सा उनको सहारा दे दिया, और कैसे कमल नयन श्री हरि को वो 6 महीने में ही उनको प्राप्त कर गए। अजामिल जैसा दुष्ट केवल नारायण नाम रख दिया, और उसके प्रभाव से उनको साधु संग, कौन साधु संग, भगवान बैकुंठ के दूत विष्णु के दूत उनको मिल गए, और उनकी हरि कथा को सुन करके परम भक्त होकर के साधन भजन करके बहुत जल्दी ही एक ही जन्म में भगवान को पा गया, बैकुंठ में उसकी गति हो गई। इसलिए साधु संग वह है जिसके संग करने से भगवान में हमारी रति हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भगवान की कथा के नाम पर ऐसा करते हैं कि अपने में लोगों की रुचि बढ़ा लेते हैं, ये साधु संग नहीं। किस को समझो, साधु वह है, गुरु वह है जो हमारी सारी श्रद्धा को एकत्रित करके भगवान के चरण में लगा दे, भगवान की तरफ में हमारी मति लगाए, हमारी वासना, हमारी कामना, हमारा सब कुछ कृष्ण के चरणों में लगा दे, वो साधु और गुरु है। इसलिए मैं समझता हूं कि आप लोगों का सौभाग्य है, आप लोग साधन भजन करेंगे। मैं अभी 1.5 महीने के लिए बाहर जा रहा हूं, अपने घर में ही साधु संग करेंगे, स्त्री पुत्र परिवार बच्चे सब मिल करके कीर्तन करेंगे, कभी एकत्रित होकर के, आप लोगों ने नियम बनाया कभी एकादशी के दिन में, कभी रविवार के दिन में, जैसे हरि कथा होती है, भक्ति विनोद ठाकुर का संग करेंगे जैव धर्म के माध्यम से, उसे पढ़ करके और कौन साधु हो सकता है। भागवत ग्रंथ अनुशीलन करेंगे, ये व्यास का आपका संग हो जाएगा। चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, इसमें चैतन्य महाप्रभु उनके परिकरों का संग हो जाएगा। खूब श्रद्धा के साथ से भगवान का भजन करेंगे। गृहस्थ लोग भगवान को नहीं पाएंगे ऐसा कहीं नहीं लिखा, त्यागी लोग भी भगवान को पाएंगे ऐसा भी नहीं लिखा। जय भजे सही गौरव भक्त, जो लोग जहां भी रहे वहीं चरा करके भगवान का भजन करेंगे, वही श्रेष्ठ है, वही भगवान को प्राप्त करेंगे। मनुष्य जीवन का लक्ष्य एक ही है, वो मनुष्य जन्म के अतिरिक्त दूसरी कहीं वो लक्ष्य पूरा नहीं होगा, वो क्या है, भगवत प्राप्ति, भगवान की सेवा की प्राप्ति। इसलिए संसार में हाय तोबा मत करो अधिक, संसार एक ऐसी छायाबाजी है, जैसे हम छाया के पीछे दौड़ते हैं तो छाया भागती जाती है, और छाया को छोड़ करके अपने गंतव्य स्थल पर चलो तो छाया तुमको चलेगी, तुमको पकड़ने की चेष्टा करेगी, तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। इसलिए छाया के पीछे मत दौड़ो, छाया ही माया है, भगवान के पीछे चलो, सब तुम्हारे पीछे पीछे जरूर आएगी, किसी चीज का कष्ट नहीं, जीवन निर्वाह के लिए भी कष्ट नहीं होगा, इस पर विश्वास रखो। इसलिए मनुष्य जीवन का यही एकमात्र तात्पर्य है कि हम कैसे संसारिक क्लेशों से पार कर करके भगवान के चरणों में हमारी स्थिति हो, यही जीवन मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, और कहीं नहीं ये पूरा होगा। इसलिए अपने इस पथ पर, उद्देश्य पर पत्थर की भांति दृढ़ होकर के, लोहे की भांति दृढ़ होकर के चलो, पूर्ण विश्वास के साथ में करो। यदि सब कुछ हो गया, भगवत भक्ति नहीं तो कुछ नहीं हुआ, बेकार का जन्म, और कुछ भी नहीं हुआ, और यदि भगवान की भक्ति हो गई तो समझो जो सब कुछ जीवन ये सफल हो गया। इस ध्येय को, इस सिद्धांत को रख करके अपने जीवन पर अग्रसर हो। अभी एक हम
भगवान प्रसन्न है
तो
सब कुछ प्रसन्न है,
सही प्रसन्न है कि नहीं आप रहे ना।
और दूसरे प्रसन्न होकर के क्या कर लेंगे, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए भगवान में खूब भरोसा रख करके और तुम अपना भजन करना है और तुम जीवन में सुखी रहेंगे। बोलो
शरीर मैं नहीं हूँ और फिर भी शरीर को हम समझते हैं कि मैं, और इसीलिए कर्म कर रहे हैं। ये सब चीजें रियलिटी समझिए, संसार में आज तक कोई सुखी नहीं रह सका। हिटलर को देखा, मुसोलिनी को देखा, इसके पहले रावण को देखा, कंस को देखा, और लोग अभी अभी राय को देखी, राव प्रधानमंत्री थे, इसके बाद में देवगौड़ा से पूछिए, अभी अभी जो बैठे हैं पाए हिल रहे हैं, कौन सुखी है? इसलिए संसारिक वस्तुओं से कोई भी सुखी नहीं रह सकता है, बल्कि ये जितना ही अधिक आएगा हमको उतना ही ताप देगा, प्रॉब्लम क्या है। इस चीज की रियलिटी को समझिए और तब ये देखेंगे हमको शांति कैसे मिलेगी। जगत का कोई भी जितना भी बैठा हुआ शांति का एक टुकड़ा भी नहीं मिल सकता है। शांति मिलेगा किसे? भगवान के द्वारा, उस भगवान को जो उसने जन्म दिया है, जो कि सब कुछ रेगुलेट कर रहे हैं, विश्व ब्रह्मांड की रचना चरमान करने वाले हैं, सूर्य इत्यादि का नियमन करने वाले हैं, क्यों उनको कुछ करा है? आप अपने बाप की सेवा करते हैं? बाप हैं?
हाँ जी।
उनकी कुछ करते हैं?
हाँ जी।
क्यों
कर्तव्य है,
उनको क्यों प्रणाम करते हैं?
कर्तव्य है उनको,
तो अपने सुख के लिए भोग किया हुआ आपने टपक गए बीच से, आपको किस लिए करना है? आजकल के आदमी कहते हैं माता पिता अपने सुख के लिए भोग किया और आप इसमें आगे हम हमारा उनके प्रति कर सकते हैं। मैया ने जो रात भर जागकर कष्ट किए, तुम्हारा गुह मूत्र फेंका, पेशाब मल मूत्र फेंका, आप उसको कभी ऋण चुका सकते हैं? नहीं चुका पिता माता का, तो भगवान का ऋण कैसे चुकाएंगे? उनके लिए आहार जोड़ करके प्रणाम करना उचित नहीं है, इसीलिए भक्ति कीजिए। एक मित्र ने आपके दुख के समय में आपकी कुछ सहायता कर दी, आप मित्र का एहसान नहीं मानेंगे? तो भगवान इतना भी भगवान का एहसान नहीं मानेंगे? भगवान ने आपके साथ कुछ नहीं किया, किया इसको रियलाइज। माता के गर्भ में आपको किसने पाला? बुद्धि की वृत्ति किसने दी? आपका जन्म कैसे स्कूल में हो गया जो आप धनी घर में है? क्यों दरिद्र में पैदा क्यों नहीं हुए? आपकी आंख अंधी क्यों नहीं रही है? ये भगवान की कृपा है, इसलिए उनको प्रसाद प्रणाम करना हमारा कर्तव्य तो है, इसलिए भी उसकी उपासना और बाकी बात तो हम पीछे बदलाएंगे।
महाराज ये सवाल मैंने करा इसलिए है कि भगवान की भक्ति तो करनी ही है, जीवन का उद्देश्य भी यही।
जोर से बोलिए, जोर निकट में आकर के बोलिए, और अधिक समय नहीं, 5 मिनट से अधिक नहीं। ये आप 50 साल अभी जल्दी नहीं होगी, आप
कोई बात नहीं, कुछ हाथ
आधा बन घंटा है आपकी बात।
नहीं नहीं पहले पूछ लीजिए
महाराज, मैंने ये सवाल इसलिए करा है कि हमको भक्ति तो करनी है, मैं पूरी तरह से इससे सहमत हूँ और उद्देश्य भी यही है।
पूरी तरह से नहीं है, मैं नहीं मानता।
चलो ठीक है महाराज, कृपा करेंगे तो समझ जाएंगे।
आपको मालूम होगा, यदि सत्संग में रहेंगे तो मालूम होगा,
कृपा करेंगे आपको।
अभी आप धुआं की तरफ में आपको विश्वास नहीं, प्रहलाद की तरफ में विश्वास नहीं, आपको जैसा संग मिला है उसके अनुसार में थोड़ी सी छाया कुछ है, ये बात ठीक है, श्रद्धा है, आप उसको जानना चाहते हैं, भगवान आप पर अनुग्रह करें और धीरे धीरे बस यही तक हो गया, इसी क्लास तक, ऐसा मत सोचिए क्लास लोअर में ही पढ़ करके संतुष्ट मत हुई है, ये हमारी शिक्षा पूर्ण हो गई, जो आपकी श्रद्धा अभी तक है, अभी जो कर रहे हैं इससे संतुष्ट मत हुई है। अपने प्रेम को विकसित कीजिए, इसके प्रेम से बसीभूत और उसके भगवान भी आपके सामने।
महाराज मैंने ये सवाल करा इसलिए है क्योंकि एक गृहस्थ जो है अकेला खुद अगर भक्ति करना चाहे और इस फिलॉसफी को समझ भी जाए कि भक्ति करनी जरूरी है, तो लेकिन घर में बाकी लोग इस चीज को भौतिक आसक्ति के कारण ही भक्ति समझते हैं। वास्तव में उस घर में रहकर, उसी गृहस्थ में रहकर, बीवी बच्चों के साथ रहकर इस प्रेम की भक्ति को बढ़ाना जो है वो संभव नहीं हो पाता। मैं इसको इसलिए जानना जरूरी है कि साथ में अगर अपनी पत्नी को और अपने बच्चों में अगर ये संस्कार डालने नहीं डाले तो खुद भी साधना भक्ति नहीं कर सकते।
ये संस्कार डालने वाले कौन है?
वैष्णव, शुद्ध वैष्णव भक्ति संस्कार डाल सकते हैं।
एक तो ये भी साथ रखिए, ये जो कुछ व्यवस्था कर रहा है भगवान का, आप खुद वैष्णव के यहाँ नहीं गए होंगे, कोई ना कोई वैष्णव जरूर आपके यहाँ पर किसी न किसी छल बल से आया होगा, और वो जो आया होगा आपकी व्यवस्था से, आपकी इच्छा से नहीं, वो प्रभु की इच्छा से। तो प्रभु के प्रति अपना कुछ भाव क्यों नहीं बढ़ाते प्रभु? वो आपकी अंतरात्मा को जानते, वो व्यवस्था करेगा तो वो अच्छा है। तो क्योंकि दो चीजें हैं, एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग। असेंड मत करो, उनको आने। इसलिए सर्वधर्मान प्रत्यक्षमान एकम शरणम। आप मान लीजिए कि जिसे अपने बच्चों को संस्कार देंगे, ठीक है, ऐसा प्रयत्न होना चाहिए, किंतु मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, वो कुछ हुआ है। उनको जहाँ पर हम आपको संस्कार मिल रहे हैं उनसे भी उनको भी जरा सहायता मिल जाए तो उनका भी देखें। इसलिए अपने से सुनना, भगवान के जो भक्त हैं नाम इनका, उनको संसार की कोई चीज की आवश्यकता नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई डिजायर नहीं, ऐसे महापुरुष का तो आपका भी संसार होगा।
हमारा
जैसे धीरे धीरे प्रमाण करें आपसे,
तो अपने नाम जप को ज्यादा से ज्यादा प्रेम पूर्वक करो,
नाम जप को क्वालिटी बढ़ाई,
क्वालिटी बढ़ाओ,
क्वांटिटी से कोई अधिक नहीं, और ये क्वांटिटी बढ़ाना आपके अधिकार की बात है। ये तो उस संग से पर निर्भर करता है जिसका आप संग करते हैं। वो यदि संसारी किसी पचड़े में आपको फंसा देना चाहता है कोई, तब तो होगा नहीं, बल्कि उन पचड़ों में रहते हुए भी कर्तव्य के खातिर उसे सीखना चाहते हैं जीवन निर्वाह के। बाकी आपकी चित्त प्रकृति को घर मोड़ दे, ऐसे समय
तो परिवार वाले से धीरे धीरे मेरे जब की क्वालिटी से भगवान स्वतः ही उनके मन में भी बात अपने आप ही जगा देंगे, मेरे को उसकी
है?
मेरे को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात, भावना आपकी रहेगी तो ये सब गड़बड़ गया। भगवान ने आपको आंशिक स्वतंत्रता दी है कोई भी चीज करने के लिए, मैं सत्संग करूँ न करूँ, मैं खाऊं नहीं खाऊं, इतना तो आपको स्वतंत्रता है, किंतु इसके फल भोगने में आपको स्वतंत्रता नहीं। इसलिए अंतिम रूप में आपकी जो स्वतंत्रता है उसके अनुसार में आप इच्छा कीजिए, उसके लिए साधन भजन भी, किंतु अभी के लिए भगवान आपकी इस वृत्ति को तो वो जल्दी बढ़े।
आप महाराज से कृपा करो मेरे पूरे घर के अंदर,
भगवान आप पर कृपा कर ले आओ, बदलने को ले आओ।
हम स्वयं अपना जन्म नहीं लिया हमने, स्वयं हम स्वयं अपने आप को बना सकते हैं?
यह दृष्टि श्रीमती राधिका के लिए परिपूर्ण रूप में विराजित है। उनका स्वभाव ही यही है जिससे कृष्ण की सेवा करती है, किंतु जीवों के हृदय में यह कैसे पैदा होती है जन्म ग्रहण करती है, इसी के संबंध में मैं प्रारंभिक दो चार बातें करती हूँ। ध्यान से सुनने की चेष्टा करें और ग्रहण करने की चेष्टा करें। पीछे में सुनाई पड़ रहा है, उदाहरण के लिए ले श्रीमद् भागवत में सबसे पहले नारद जी ने अपना जीवन चरित्र स्वयं व्यासदेव जी को सुना। कैसे उनके हृदय में बल्कि श्रीमद् भागवत का प्रारंभ नारद जी के चरित्र से ही होता है। उन्होंने बताया कि मैं एक गरीब और नीच जाति की नीच जाति में मेरा जन्म हुआ। मेरी मैया कुलीन लोगों के घर में बर्तन मांजने का लिए चौका साफ करने का काम था। जब मैं 5 वर्ष का हुआ तो माता के साथ ही मैं हमारा जीवन यापन होता रहा साधारण बालकों की तरह। 5 वर्ष की उम्र में उनके गांव में कुछ संत आए। कैसे संत? सनत सनंदन सनातन सनत कुमार और उनके साथ में रहने वाले संत लोग कैसे होंगे? ऐसे ही होंगे जो कि भगवत अनुभूति संपन्न संसार से परम विरक्त भक्ति रस का आस्वादन करने वाले ऐसे महापुरुष रूप से माने। गांव का तो भाग्य था कि ऐसे महात्मा मिला। मैं समझता हूँ कि वो गांव भी किसी सुंदर गंगा नदी के या जमुना के उपकूल में होगा। भगवत श्रेणिया भी नहीं होगी कहीं हमारे का आस पास में कहीं हरिद्वार या इंद्रप्रस्थ या ऐसे जगहों में हो। बहुत ही सुंदर रमणीय गांव था, पवित्र गांव था, नहीं तो वहां पर आते क्यों? इसलिए अनुमान से ऐसा लगता है कि गांव में अच्छे अच्छे व्यक्ति रहे, भक्ति वाले लोग सभी वो महात्मा। सनत सनंदन ऐसे बैरागी लोग कपड़े तक नहीं पहनते और सत्य में उनकी 5 वर्ष की उम्र, तत्व ज्ञान उनमें भरा पड़ा है, इतनी शक्ति सामर्थ्य रखते हैं कि किसी को कह दिए तुम भगवत दर्शन हो जाए तो हो जाए, किसी वजह प्रेम हो जाए तुम्हारे अंदर में भक्ति आदमी भूख जाए। जीवित मर गया आदमी उसको कहते नहीं जीवित हो जाए तो जीवित, ऐसी शक्ति थी। आए गांव वालों ने आदर आओ भगत किया, स्थान दे दिया। गांव के बाहर नदी के किनारे पर्वत श्रेणियों के उपत्यका में उनके रहने की व्यवस्था कर दी गई। छोटी छोटी फूस की झाड़ियां लगा दी गई झोपड़ी, उनको झोपड़ी की भी जरूरत नहीं। उस समय तक वर्षा बंद हो चुकी है कौन सा महीना वर्षा के बाद में ये सब मैंने चार महीने वहाँ रहे वर्षा का क्या समय का लगता है वर्षा भी आरम्भ हो रहा है उस समय से रहे झोपड़ी लगा दी और गांव वालों ने भी उस महिला को कह दिया तुम इनके घर में इनके यहाँ चौका वासन कर देना फसल में खाते हैं यहाँ से लेकर के खा लेते हैं कुछ जीवन निर्वाह के लिए खा लेते हैं बिना खाए भी उनका जीवन निर्वाह